أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چل رہی ہے اور اس میں ہم اس کتاب کے مطابق تیسرے درس کے اندر مطالب کو بیان کر رہے ہیں. اس درس میں جو مکتب ڈسکس ہوا وہ تھا آبجیکٹیو آئیڈیالزم، کہ جس کو فارسی زبان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے آئیڈیالزم آئینی. اس کے اندر تین اہم شخصیات تھی کہ اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہیگل جو ہے ان دو جو اس کے علاوہ تھے، فیکتے تھا اور شیلنگ تھا، ان سے زیادہ معروف ہوا. اس نے اس آبجیکٹیو آئیڈیالزم کو جو ہے تبیین کرنے میں زیادہ اہم کردار ادا کیا اس نے، اور باقیوں کے نسبت ایک جامع اور منسجم فلسفہ جو ہے وہ وجود میں لایا ہیگل. اور اس کا اہم ترین جو ایک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اس جہان کے اندر ہے وہ سب روح مطلق کے، آپ یوں کہہ لیں کہ اس روح مطلق کے مظاہر ہیں، روح مطلق کے تفکر ہے، یا جو بھی آئیڈیا، یعنی جتنے بھی ہیں یہ آئیڈیا کیا ہیں، سب کے سب کی کس کے آئیڈیا ہیں، یہ روح مطلق کے ہیں. چونکہ کل آپ کے خدمت میں ایک ایبسلوٹ آئیڈیا کا نظریہ جو پایا جاتا ہے، جسے فارسی میں عید مطلق کہا جاتا ہے، اس میں ہیگل کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ایک عید مطلق ہے، ہمارے پاس ایبسلوٹ آئیڈیا موجود ہے، باقی جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ سب کے سب اسی سے منشا لیتے ہیں اور اسی ہی کے ہیں. درست ہے؟ ایبسلوٹ سے مراد یا مطلق ہے فلسفی زبان کے اندر.
ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیت ہے، وقت ہے، یہ
ایبسلوٹ نہیں. جی ہاں. چونکہ خاص ہیں ایک چیز کے ساتھ، جو خاص نہ ہو اس کو کہتے ہیں ایبسلوٹ. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایران کے ساتھ مخصوص ہو مثال کے طور پہ تو یہ ایبسلوٹ نہیں کہلاتا. مثال کے طور پہ عرض کرنا، والا ہر میدان میں ایبسلوٹ ایک الگ معنی رکھتا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح ایک مطلق ہے، جو ہیگل کہنا چاہ رہا ہے یہ کوئی بھی خاص چیز نہیں ہے، جیسے کل وضاحت کی تھی اس کی کہ وہ آگ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کا، لیکن سب چیزیں ہیں اس کی. درست ہے؟ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور ہیگل نے جو منطق تاسیس کی ڈائیلیکٹک لاجک کے نام سے، کہ جس کو ڈائیلیکٹک منطق کہہ لیں گے، اس میں ڈائیلیکٹک اصول جو ہیں، پرنسپلز جو ہیں اس کے، اس نے تبیین کیے اور یہ کہا کہ اگرچہ یہ منطقی اصول جو بیان کیے گئے ہیں ڈائیلیکٹک کے، یہ منطقی اور ذہنی ہیں، لیکن عالم عینی اور عالم ذہنی یہ دونوں چونکہ ایک ہی ہیں، بس کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کیونکہ اس آبجیکٹیو آئیڈیالزم کے اندر ذہن اور عین کے اندر جو دوئیت پائی جاتی ہے، ڈیولزم جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے، اور جتنے بھی خارجی چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، اس روح مطلق کے آپ یوں کہہ لیں کہ افکار ہیں، اس روح مطلق کے تفکرات شمار ہوتے ہیں. یہ تھا ہیگل کے فلسفے کا خلاصہ، کہ جو آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، کہ اس کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کی تھی. اس کے بعد جو ایک مکتب کا تعارف کرواتے ہیں وہ ہے پازیٹیوزم. پازیٹیوزم یہ مکتب جو ہے اصل میں حس گرا ہے، حس کے اوپر اس کا اعتماد زیادہ ہے، और इस हिस गिराई के अंदर ये क्या हैं, ज्यादा घिरे हुए हैं, मुब्तला हैं, जिसको हम कहते हैं कि इफराती हालत में हैं। यानी जो पहले तजुर्बी मजहब जो है, एम्पेरिसिज्म जो मौजूद था, वो भी हिस गिरा ही था, हिस पर एतमाद था उनका, लेकिन वो इतने भी आगे नहीं गए हुए थे कि जितना ये पॉजिटिविज्म वाले जो हैं वो आगे चले जाते हैं। पॉजिटिविज्म का बानी कौन है? 19वीं सदी के अवाएल में एक मुफक्किर जो है वो वजूद में आता है और उसने इसकी बुनियाद रखी, ऑगस्ट कॉम्ट या कॉमट या कॉम्प्ट, इसको तलफ़ुज़ करते हैं, मैंने जो देखा है, ऑगस्ट कॉम्प्ट के फारसी में इसका तर्जमा जो इसके नाम का किया गया है वह अगुस्त खोंत है। अगर आप मसलन फारसी की किताबों का मुताला करते हैं तो ऑगस्ट कॉम्प्ट को जो इन्होंने लिखा है वो अगुस्त खोंत के ज़रिए लिखा है, तो लिहाजा पता होना चाहिए कि ये फलसफी जो है वही है। और इसकी जो शोहरत है ज्यादा वो है सोशियोलॉजी के अंदर, जो सोशियोलॉजी के अंदर मुतालात रखते हैं वो जानते हैं कि मगरिब जमीन के ऊपर सोशियोलॉजी का बाप कहा जाता है इसको, जिसको हम अपनी जबान में क्या करते हैं, जामिया शनासी, जामिया शनासी का ये पैदर शुमार होता है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट से पहले जामिया शनासी की बहसें, सोशियोलॉजी की बहसें मौजूद तो थीं, लेकिन एक अलग इल्म के उन्वान से जो है वो मौजूद नहीं था, और उसको अलग सब्जेक्ट के उन्वान से तदरीस नहीं किया जाता था, बयान नहीं किया जाता था, लेकिन इस ऑगस्ट कॉम्ट ने आकर इस बात को जो है वो बढ़ाया आगे, जामिया शनासी को बेस करार दी है और कहा है कि इस इल्म के ऊपर फिर कोई और इल्म नहीं है, यानी इल्म की इंतहा जो है वो इस जामिया शनासी के अंदर होती है। हत्ता जितने भी हम बाकी साइंसेज हैं, मसलन इक्तिसाद है, मसलन लॉ है, मसलन बाकी उलूम भी आ जाते हैं, उन सबको वो कहता है ये सारे जामिया शनासी से मरबूत हैं। यानी इस हद तक जो है उसने जामिया शनासी, बहरहाल वो आप खुद मुतालात करेंगे सोशियोलॉजी के अंदर या होंगे आपके, कि ये मतालब वहां पर बयान हुए हैं। अलैकुम अस्सलाम। पॉजिटिविज्म में अगुस्त कॉम्ट फारसी के मुताबिक और इंग्लिश में अर्ज, ये थोड़ा सा गड़मट रहती है, ऑगस्ट कॉम्ट जो है ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि मेयार फकत हिस है। खूब, ये बात तो पहले वाले भी करते थे, इसने नई बात क्या की है, इसने नई बात ये की है कि जो चीज भी हिस में नहीं आती, जिन उलूम के कजाया प्रोपोजिशंस जो हैं उनकी अगर हिस के दायराकार में नहीं आती वो बेमाना है, असल माना ही नहीं रखती। बेमाना से क्या मुराद? मसलन अभी मैं आपके सामने जुमलात अदा कर रहा हूं, इसके कुछ मानी हैं, आप समझ रहे हैं, माफी ज़मीर मेरा मुंतकिल हो रहा है, लेकिन एक मरतबा मैं कुछ ऐसे अल्फाज अदा कर देता हूं उसको कोई भी नहीं समझ सकता, मसलन उल्टी फुल्टी कोई जबान बोल दी जाए, मसलन जैद को दहेज बना दिया जाए, मसलन आम्र को रमा बना दिया जाए, मतलब इस तरह करके उल्टा जिसका कोई माना ही असलन ना हो, ये जो कैफियत है, ये कहते हैं कि खुदा वजूद रखता है, ये एक पूरा क्या है, सेंटेंस है, कहते हैं इस सेंटेंस का कोई माना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस में नहीं आता। बस इसके नजदीक इल्म का मेयार क्या चीज बनी हुई है? हिस। जो चीज भी हिस में नहीं आएगी वो इल्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि इल्म के अंदर जो सेंटेंसेस मौजूद हैं, प्रोपोजिशंस मौजूद हैं, वो माना रखती हैं, क्योंकि इल्म आनी ही का तो मजमूआ है, कजाया का मजमूआ कहलाता है आकर, तो तो लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए इसने कहा कि जितने भी कजाया मेटाफिजिक्स से मरबूत हैं वो सब के सब जो है वो बेमाना है, रूह वजूद रखती है बेमाना है। ये ऐसे ही है जैसे है ना, एक बच्चे को आप मसलन कोई एक लफ्ज बोलें उसने अभी सीखा हुआ ना हो तो उसको आप जो मर्जी कहते हो, कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहता है कि हमें खुदा वजूद रखता है का कजिया समझ में नहीं, कोई माना नहीं है इसका। रूह वजूद रखती है इसका कोई माना है, और इसका कोई माना नहीं है, हमें समझ में नहीं आता इसका आके। यानी इसने आकर कहा कि ये बेमाना है बिल्कुल, और जितने भी इंतजाई मफाहीम हैं कि जो मुस्तकीम मुशाहदे में नहीं आते उनका इनकार कर दिया। यानी बहुत ज्यादा इफराती हो गया ये, और इसके नजदीक फकत जो है वो 5 या 6 इल्म बाकी बचते हैं कि जिनको ये इल्म मानता है। एक लिस्ट बयान हुई थी, मैं लिख के याद नहीं रहा लेकर आता, मसलन रियाजी है उसके अंदर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, खुद इस सोशियोलॉजी को तो सबसे ऊपर रखता है ना, कहता है इससे ऊपर तो फिर कोई और इल्म है ही नहीं ना। ठीक है, ये एक 5 6 6 उलूम की एक लिस्ट है इसकी, जो जिसको ये इल्म मानता है, और फिर इक्तिसाद और ये जो बाकी साइंसेज हैं इसको जामे शनासी ही के ज़ुमरे में ले आता है और बस यहाँ पे क्लोज कर रहा है। इसके अलावा जितना कुछ मौजूद है वो कहते हैं ये इल्म ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हिसगिरा और अफराती मौजूद है। और ये फिक्र अभी भी मगरब ज़मीन के अंदर ज़िंदा है, पॉजिटिविज्म जो है। एक चीज जो इसने अंजाम दी वो इसकी बहुत ज्यादा मशहूर है, क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट ने आकर फिक्र बशर के 3 मरहले किए हैं, 3 स्टेजों में बयान किया है, शायद आपने पहले सुना हो। एक इलाहियाती मरहला बशर ने तय किया है इसके मुताबिक, थियोलॉजिकल स्टेज। इसके अंदर ये कहता है कि बशर अभी क्या कर रहा है, जरा बचगाना मरहला तय कर रहा है अभी ये बशर जो है वो अपनी बचपने के अंदर है। यहां पर क्या काम अंजाम देता है ये बशर, बशर क्या करता है, जितने भी हवादिस इस कायनात के अंदर रूनमा होते हैं उन सब की इल्लतों को मावरा करार देता है। जलजला क्यों आता है, मसलन एक मावराई, अब कोई भी दिन मसलन अदियान इब्तदाई के बारे में कायल हैं कि वो कहते थे कि मसलन फलाना देवता कर रहा है, फलाना देवता कर रहा है, देवता के नाम से जो है वो याद किया जाता था उनको। तो ये कहता है बशर का इब्तदाई मरहला है, इलाहियाती मरहला, थियोलॉजिकल स्टेज, कि जिसके अंदर इल्लत मावरा की तरफ निस्बत दी जाती है। दूसरा मरहला जो है वो मेटाफिजिकल स्टेज है, जिसको फलसफी मरहला कहते हैं। इसके अंदर बशर क्या करता है, कहते हैं कि यहां बशर थोड़ा तरक्की कर गया है, उस इलाहियाती दौर से बाहर आ गया, उस बचपने से बाहर आ गया, अभी ये नौजवानी की जिंदगी गुजार रहा है, शऊर थोड़ा बहुत आ गया है। इसने जो हवादिस रूनमा होते हैं इस दुनिया और कायनात के अंदर, पहले जमाने में बशर इसको मावरा की तरफ निस्बत देता था, जो नजर ना अन्ना मरई चीजों की तरफ निस्बत देता था, और वो भी मावराई, यानी इस आलम से हटकर जवात मौजूद हैं कि जो ये काम इंजाम दे रही हैं। लेकिन फलसफी मरहले में आकर इल्लतों को इसी दुनिया के अंदर ही जो है वो करार देने लग गया, मावरा की तरफ नहीं गया, इसी की तरफ है। लेकिन इल्लत किसे करार दिया, एक नामरई चीज को, कहा कि आग क्यों गर्माइश देती है, चूंकि तबीयत व जात आग ऐसी है। अब तबीयत आग को इंसान अपनी आंखों से नहीं दे सकता, ये बात तमाम फलासफर मानते हैं कि जौहर को हिस के जरिए दर्क नहीं किया जा सकता। मसलन इस वक्त आप भी एक जौहर रखते हैं, एक जात रखते हैं, आप हिस के जरिए फकत आसार को देखा जा सकता है। आग का असर गर्माइश है, आग का असर रोशनाई है, ये जितनी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं ये उसके आसार हैं, ना कि वो खुद जात है। जात ना मरई है, हिस के जरिए जौहर को नहीं देखा जा सकता। तो खामट ये कहता है कि बशर ने जब थोड़ी सी तरक्की की फिक्री तौर पर, तो बजाय इसके कि ये इल्लत को मावरा की तरफ निस्बत दे, इल्लत को इसी कायनात में ही निस्बत देने लग गया, लेकिन वो इल्लत कौन सी थी? तबीअत ज़ात को करार दे दिया उसने, नामरई चीज को जो है वो इल्लत करार देने लग गया, जो कि तबीअत थी, जौहर था, ठीक है, ज़ात थी, ज़ात अशिया की तरफ निस्बत देना है। तीसरा मरहला कहते हैं कि जो बशर ने तय किया है ये जवानी का मरहला, शऊर का मरहला है, यानी यहां पे इंसान जो है वो इंसान कहलाता है और सही शऊर का मालिक है, वो है पॉजिटिव स्टेज, यानी इल्मी मरहला, कि जहां पर इंसान क्या करता है, साइंस को मेहवर बनाता है, और साइंस के अंदर भी हिस्से इफराती, जिसका मैंने अभी तारुफ करवाया आपको, पॉजिटिव स्टेज, ये तीसरा मरहला है। इसके अंदर क्या करता है बशर? इसके अंदर बशर जुस्तजू करता है कि अशिया का एक दूसरे के साथ राबता क्या है, और फिर उसकी कैफियत के पीछे जाता है कि आग अगर तासीर करती है पानी के अंदर या किसी दूसरे जिस्म के अंदर, इनका आपस में क्या रابطہ है, ये तासीर और तासुर कैसा है, क्यों होता है ये, यानी यहां पर क्यों ज्यादा है, और कैफियत को जो है वो जाना जाता है, और इसी के जरिए फिर क्या होता है, उलूम वजूद में आ जाते हैं। चूंकि आप एक चीज की कैफियत और चिराई, फारसी में जिसे कहते हैं कि चिराई को जानते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको तहलील जब करेंगे और तहलील करके फिर जब रवाबित को कश्फ कर लेंगे तो उस वक्त क्या होगा, आप जो है वो एक इल्म तक पहुंचेंगे, इल्म हासिल होगा आपको, और उलूम की बुनियाद भी इसी के अंदर है। ये है मरहला इस्बाती या पॉजिटिव स्टेज। ये जब उसने नजरिए को तरवीज करना शुरू किया और इसके फॉलोअर्स भी पैदा हो गए, अब इसने देखना यह शुरू किया कि मुआशरा तो किसी और तरफ जा रहा है। क्यों? इस वजह से कि इसने इतना ज्यादा हिसगिरा बना दिया इंसानियत को कि अब मेटाफिजिक उमूर की कोई वक़्त बाकी नहीं रही। दीन के जितने उमूर है, अक्सर उमूर क्या है, मेटाफिजिक हैं, यानी इंसान के हिस में नहीं आती और हिस से मावरा है। बात वाज़े है। बस बशर ने के अंदर ऐसे इनहराफात पैदा होना शुरू हुए इस कांट के जमाने के अंदर ही, इसने आकर देखा कि नहीं, कि जिस तरीके से मैं लेकर जाना चाह रहा था पॉजिटिविज्म के जरिए, ये उल्टा नतीजा दे रहा है, मसलन गलत हो रहा है, और महसूस ये हो रहा है कि बशर बगैर दीन के नहीं रह सकता। ये एहसास किया बकायदा ऑगस्ट कॉम्ट ने, जब उसने इस बात का एहसास किया कि बशर दीन के बगैर नहीं रह सकता, तो अब बाकी अदियान को तो ये रद्द कर चुका था, क्योंकि उसने जो रविश इख्तियार अपनाई है उस रविश के तहत तो कोई दीन भी पाबरजा नहीं रह सकता, किसी दीन का ये कायल नहीं हो सकता, और ना ही इसकी रविश के पाबंद अफराद जो है वो किसी दीन को मान सकते हैं, तो क्या करें। फिर इसने एक नया दीन तासीस किया इंसानियत के नाम पे। एक दीन इंसानियत के नाम पे इसने तासीस किया, और फिर इंसान की पूजा करने के लिए फिर इन्होंने माबद भी बनाए, इबादत गाहें बनाई कि जिसके अंदर इंसान की पूजा और इंसानियत की पूजा की जाने लगी। जब इसने देखा कि दीन के अंदर एक चीज जो अहम उनसर पाया जाता है, उस दीन की किताब है जिसको मुकद्दस बनाया जाता है, फिर इस कांट ने किताब भी लिखी कि इंसानियत के दीन में इस किताब को माबदों में जाके पढ़ा जाए। खुद ये पैगंबर बन गया उस दीन का, और फिर इसने अपने नुमाइंदे बनाना शुरू किए कि ये लोगों के जो है वो सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखें। अब आप देखें कि इंसान अगर गलत रास्ते पे चढ़ा हुआ हो तो किस तरीके से एक इंसान कितने लोगों को गुमराह कर जाता है, कि जिस चीज से दूर करने के लिए उसने पॉजिटिविज्म का रास्ता इख्तियार किया था। या मसलन हम हुस्ने ज़न करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है ऑगस्ट कांट जो है वो दीन से मुतनफिर नहीं था, उसने रविश एक ऐसी इख्तियार कर दी जिसका नतीजा दीन की नफी निकलता है। लेकिन जब उसको ये एहसास हो रहा है कि बशरियत जो है वो तमाम की तमाम बशरियत दीन की तरफ न्याज रखती है, तो बजाय इसके कि वो ये नतीजा ले कि दीन जो है वो इंसान की फितरी जरूरत है और जो दीन हकीकी है उसकी तलाश में जाए और उस दीन का फिर तआरुफ पूरी बशरियत को कराए, उसका मुबल्लिग बने, इसने फिर खुद से क्या कर दिया, अपनी दीन को तासीस कर दी और फिर बशर को उसके पीछे लगा दिया। और यहीं से अगरचे कुरून वुस्ता का जमाना जैसे ही खत्म होता है, मिडल एजेस का जो जमाना है वो खत्म हुआ, तो खत्म होते ही जो फिक्र बशर के जहन में आई मगरिब जमीन के ऊपर वो ह्यूमनिज्म था, इंसान महवरी थी। लेकिन आप देखें कि कांट के फलसफे के मुताबिक जो दीन इसने तासीस किया इसके अंदर तो खुद खुदा इंसान बनता है, क्योंकि इंसानियत को उसने दीन बनाया और फिर इंसानियत इंसान की पूजा करवाई उसने, और बाकायदा हुई, मरासिम भी हुए, तारीख में नकल हुआ है। तारीख फलसफा कोई भी उठा के देख लें जिसमें ऑगस्ट कांट की बातें नकल हुई हैं, जाकर उसको जाकर मुताला करें कि किस तरीके से वो काम जो है वो अंजाम पाए। तो ये कामिल नमूना है ह्यूमनिज्म का, और आज देख लें इसकी जड़ें जो हैं इस वक्त मगरब मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। हर चीज को इंसान महवर बनाकर पेश किया जाता है, हर इल्म में इंसान महवरी जो है वो मौजूद है। अगर आप दीन का मुताला करते हैं तो दीन में भी इंसान को महवरियत हासिल है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, खलीफतुल्लाह बनाकर भेजा इंसान को, मजहरे सिफाते खुदा बनाकर भेजा इंसान को, और इंसान ही इंसान कामिल है, इंसान ही में से इंसान कामिल निकले हैं कि जो महवर बने इस कायनात के। लेकिन इस्लाम की इंसान महवरी को जा, और इन मगरिब जमीन के अंदर इंसान महवरी क्या है? ये तो इंसान मादी को महवर बनाए हुए हैं, मादी पहलू को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इंसान में जो अहमियत इंसान को हासिल है वो उस अहमियत जो ये अहमियत जो है वो वहां पर हासिल नहीं है। खूब, ये तो था मकतबे पॉजिटिविज्म कि जिसका पैगंबर जो है वो ऑगस्ट कांट है। ये एक तारुफ करवाया जनाबे आयतुल्ला मिसबाह हाफ़ज़हुल्ला ने। इसके बाद आप यूं समझ लें कि आगे चल के खुलासा कर रहे हैं कुछ बहस का। कहते हैं कि दो मगरिब जमीन अब तक दो बड़े मकतबे फिक्र में तकसीम हो चुकी है। एक मकतबा फिक्र है रैशनलिज्म, और जिसमें अकल गिराई पाई जाती है, और दूसरा बड़ा मकतब है हिसगिरा, एम्पेरिसिज्म कह लें या पॉजिटिविज्म कह लें आप इसको, बल्कि पॉजिटिविज्म कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बाद फिर पॉजिटिविज्म वाली नजर आगे चली है। एम्पेरिसिज्म के अंदर जो बाज मुस्बत नुकात थे इन्होंने वो भी खत्म कर दिए थे आगे पॉजिटिविज्म, और बाद में जो हिसगिरा आए अफराद तो उन्होंने इसी मकतबे पॉजिटिविज्म को जो है वो तरवीज करने की कोशिश की है। तो फरमाते हैं कि आकल गिराओं में से 19वीं सदी के अंदर के जो एक बर्जस्ता शख्सियत रही वो है हेगेल, और मकतब जो है वो आइडियलिज्म हेगेल जो है वो काफी बर्जस्ता रही, कि हत्ता इंग्लैंड इंग्लिस्तान के अंदर भी इसके तरफदार जो है वो मौजूद रहे। और दूसरे ग्रुप की तरफ अगर आए कि जो पॉजिटिविज्म हैं इनकी जो बर्जस्ता जो शख्सियत रही है, एक वेटगेनस्टाइन है, कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वेटगेनस्टाइन को के मुतकदम व मुतअख्खर, यानी पहले वेटगेनस्टाइन, चूंकि इसके दो नज़रिए बने थे, एक मर्तबा इसकी एक नज़र थी जिसमें ये पॉजिटिविस्ट था, फिर इसके बाद इसकी एक नज़र बनी कि इसने आके उस नज़र को तब्दील किया आके, और फ़लसफ़ा तहलीली की बुनियाद रखी कि आज भी वो एनालिटिक फ़लासफ़ी जिसको कहा जाता है कि उसकी बुनियाद रखी, कि बहरहाल इसका एक ज़माना जो है ये पॉजिटिविज्म के अंदर गुजरा है। तो लिहाजा बरजस्ता शख्सियत जो इन्होंने यहाँ पे शुमार की है ये है वेटगेनस्टाइन है। एक है कारनाप है, दूसरा रसेल है, कि ये इस हिस गिरा में आते हैं पॉजिटिविज्म के, इनके अंदर जो है वो अनासिर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर जनाब आयतुल्ला मिसबाह हाफ़िज़ुल्लाह फरमाते हैं
तो यही
जी,
जो बनी तो वही हो गए
बानी तो अगस्त खामस खाम्ट है ना, अगस्त खाम्ट ये पॉजिटिविज्म का बानी है। उसके बाद फिर जो इस मकतब फिक्र की तरफ रुझान रखते रहे, तरवीज करने में उन्होंने मदद की, तो ये वाले बाज अफराद हैं। इसके बाद एक और तकसीम बंदी यहाँ पर बयान करते हैं, वो ये कि अगर आप देखें तारीख़ फ़लसफ़ा के अंदर गालिबन की बात हो रही है, कुल्ली बात नहीं हो रही कि मतलब 100% ऐसा है ना, गालिबन ऐसा रहा कि जो इलाही फलासफर थे वो अकल गिरा रहे हैं, यानी जो अकल को मानते थे, अकल नजरी के कायल थे, अकल की अहमियत के कायल थे, अकल गिरा थे, रैशनलिस्ट थे, ये गालिबन इलाही फैलसूफ रहे हैं, और जो हिस गिरा थे गालिबन मुलहिद रहे हैं। और इसकी वजह आपकी खिदमत में तफसील से कलाम जदीद के दर्स में जो है वो बयान की थी, चूंकि जो इंसान हिस गिरा हो जाए मुमकिन ही नहीं है कि वो खुदा को कबूल करे, चूंकि खुदा हिस में नहीं आता, और जो हिस को मेयार बना ले फिर खुदा को साबित करना उसके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। एक मुरिद जिक्र करते हैं, चूंकि इन्होंने कहा गालिबन अकल गिरा जो है वो फलासफर इलाही रहे हैं, फरमाते हैं कि हम एक मुरिद जिक्र करते हैं कि जो अकल गिरा तो था लेकिन मुलहिद था, उसका नाम लिखते हैं मैक टैगरट। मैक टैगरट ये हेगली फैलसूफ था, यानी मकतबे हेगल का जो है कायल था, और हेगल का फलसफा जो है वो अकल के ऊपर है, अगरचे उसके अंदर हिस और तजर्बा जो है वो अहमियत रखता है, लेकिन बिलाखर एक जामे फ़लसफ़ा वो रखता था और अक्ल की अहमियत का कायल था, हेगली फ़लसफ़ा तो, लेकिन ये मुलहिद हो गया। अगरचे हेगल के फ़लसफ़े के बारे में बहुत सारी बहसें मौजूद हैं, क्योंकि हेगल के तरफदारों के अंदर बाज़ ऐसे हैं कि जो इलाही रहे हैं और बाज़ ऐसे हैं जो मुलहिद रहे हैं, जैसा कि मैकटैगरेट के बारे में अर्ज़ किया आपको। और फिर बाज़ बंदों ने आगे ये कहा कि हेगल ने अगरचे जाहिर के अंदर ऐसी बातें की हैं कि जिसके अंदर खुदा का इनकार नहीं है या खुदा का इस बात मिलता है, लेकिन इस फलसफे की बुनियादें जिस असास और उसूलों पर बनी हैं अगर उसके साथ चला जाए तो इंतहा इलहाद के ऊपर ही होती है। बहरहाल ये एक तफसीली बहस है कि हेगल के फलसफे को खोला जाए और फिर देखा जाए कि आया वाकया हेगल का फलसफा इलहाद की तरफ लेकर जाता है या इलाह की तरफ लेकर जाता है, खुदा की तरफ लेकर जाता है। फरमाते हैं कि हेगल का जो मकतब था आइडियलिज्म, जो इसका था पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ये काफ़ी हद तक जो है वो मशहूर हुई, और इसका जो फ़लसफ़ा था वो जाज़िबा भी रखता था और नस्बतन मुनसजिम और वसी भी था, लेकिन चूंकि कवी मंतिक इसके अंदर नहीं पाई जाती थी, मंतिक अगरचे इसने तासीस की है मंतिक, लेकिन मंतिक हकीकत में इसकी कवी नहीं थी, और का ज़्यादा अरसा न गुज़रा कि इसके ऊपर इंतकाद होना शुरू हो गए, इस मकतब के ऊपर एतराजात शुरू हो गए। दो बड़ी शख्सियात ने हेगल के मकतब को रद्द करना शुरू किया, उनमें से एक क्रेकेगार्ड है और दूसरा कार्ल मार्क्स है। क्रेकेगार्ड जो है ये डेनमार्क के एक आलिम था, और इसने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बुनियाद रखी है, फलसफाए वजूदियत जिसको उर्दू में तर्जमा किया गया है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इसका बानी क्रिकेगार्ड है। इसने भी इंतकाद और एतराजात किए हेगल के ऊपर कि जो उसके अंदर ज़ाफ मौजूद था उसके फलसफे में, और कार्ल मार्क्स ने भी आकर जो है हेगल के मकतब पर जो है वो एतराज किया और एक नए मकतब की जो है वो बुनियाद रखी कि जिसका नाम बाद में पड़ा और आज भी मार्क्सिस्ट लोग जो हैं इसी के साथ पहचाने जाते हैं, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। यानी ये मटेरियलिस्ट जो पहले मौजूद थे या मटेरियलिज्म जो पहले मौजूद था उससे फर्क करता है, ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के कायल हैं, खाली मटेरियलिज्म के मकतब के कायल नहीं थे। और क्या फ़र्क है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के अंदर के बाद में आयतुल्लाह मिसबाह मुख्तसर तौर पे इसका जो है वो तआरुफ़ करवाते हैं कि इंशाल्लाह इसको फिर बाद में बयान करते हैं। वह ख़त्म हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अल्लाह।